नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है एक अफसाना। और आज वीकेंड तो नहीं है, लेकिन आज एक स्पेशल दिन है। आज मेरे प्रिय कवि एवं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिवस है। कहा जाए कि ये ऐसे समय में जहां देश में अधिसंख्य लेखक राजनीतिक विचारों या फिर वाइस्ड तरीके से अपनी कृतियों को लिखते हैं, जहां लेखन और भाषण शैली भी अपने अपने राजनीतिक खेमों में नफ़े और नुकसान को मापन करके लिखी जाती है, जनता से जुड़े मुद्दों को भी राजनीतिक दलों के नफ़े नुकसान से ही मापा जाता है, यहाँ तक कि लोगों की जानों मुर्दों को भी जाति धर्म के चश्मे से देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी है। ऐसे समय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करना ना सिर्फ समाज और राजनीति को नई दिशा देने के लिए कारगर है, साथ ही साथ वह उन लेखकों को जो कि राजनीतिक विचारों के आधार पर अपनी कृतियों का लेखन करते हैं, उनको एक दायित्व का बोध कराने के लिए अहम साबित हो सकता है। तो आज रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्मदिवस के अवसर पर मैं आपके सबके लिए लेके आई हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ रचनाएं। सबसे पहली रचना है नीलकुसुम। ये रचना एक प्रेमी के ऊपर लिखी गई है, जो कि अपनी प्रेमिका के लिए नीलकुसुम नामक फूल लेने जाता है। नीलकुसुम एक ऐसा फूल दर्शाया गया है कि जो बहुत बहुत ही एक्सटिंक्ट है, जो कि आसानी से नहीं मिल सकता। पहाड़ों की चोटियों पर मिलने वाला ये फूल, जब प्रेमी वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक खानाबदोश इंसान मिलता है, बूढ़ा इंसान, खानाबदोश कह सकते हैं। वो मिलता है तो वो उससे क्या बोलता है, उस प्रेमी से क्या बोलता है, ये सुनिए। है यहाँ तिमिर, आगे भी ऐसा ही तम है, तुम नील कुसुम के लिए कहाँ तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गवाओगे। इस प्रश्न को सुनने के बाद प्रेमी उस खानाबदोश इंसान से बोलता है कि वह अपनी प्रेमिका के लिए नील कुसुम का पुष्प लेने जा रहा है। तो वो इंसान क्या बोलता है कि प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्रेम की दौड़ प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं, इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़ कर कौन वहीं पर लाया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसकी जहाज फिर देश लौट कर आया है। इन सभी बातों को सुनने के बाद प्रेमी बोलता है कि ओ नीतिकार, तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पागलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। और सुना कहाँ तुमने कि जिंदगी कहते हैं सपनों में देखा उसे पा जाने को, इच्छाओं की मूर्तियां घूमती जो मन में, उनको उतार मिट्टी पर गले लगाने को। जिंदगी आह वह एक झलक रंगीनी की, नंगी उंगली जिसको न कभी छू पाती है, हम जबी हाफते हुए चोटियों पर चढ़ते, वह खोल पंख चोटियां छोड़ उड़ जाती है, हम जभी हाँफते हुए चोटियों पर चढ़ते, वह खोल पंख चोटियां छोड़ उड़ जाती है। रंगीनी की वह एक झलक जिसके पीछे है मची हुई आपा आपी मस्तानों में, वही एक दीप जिसके पीछे है डूब रही दीवानों की किश्तियाँ कठिन तूफानों में। डूबती हुई किश्तियाँ और यही किलकारी, ओ नीतिकार क्या मौत इसी को कहते हैं? है यही खौफ जिससे डर कर जीने वाले पानी से अपना पांव समेटे रहते हैं। जिंदगी गोद में उठा उठा हलचाती है आशाओं की भीषिका झेलने वालों को, और बड़े शौक से मौत पुलाती है जीवन अपनी छाती से लिपट खेलने वालों को। तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके। मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। हो जहाँ कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले आऊँगा। जूड़े में जब तक भेंट नहीं है बांध सकूँ, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊँगा। जूड़े में जब तक भेंट नहीं है बांध सकूँ, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊँगा। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नीलकुसुम। इस रोमांटिसिज्म के साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज भी आया जो कि उन्होंने आज़ादी के ऊपर लिखना शुरू किया, लोगों के ख़िलाफ़ भी लिखना शुरू किया। वो कहा जाए तो वो किसी एक फ्रेम में बैठने वाले नहीं थे, वो किसी एक फ्रेम में किसी भी एक विचारधारा के अंदर जीने वाले कवि नहीं थे। उन्होंने निराशावादी पर भी लिखा, उन्होंने साम्यवाद पर भी लिखा, वे मार्क्सवादी भी थे, वे गांधीवादी भी थे। और उन्हें राष्ट्र कवि किसी राजनीतिक विचारधारा की पार्टी या फिर राजनीतिक आंदोलन ने उन्हें राष्ट्र कवि या जन कवि नहीं माना गया। उन्हें जन कवि इसलिए माना गया क्योंकि उन्हें जनता ने स्वीकार किया था। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रहित था। तो इसी के साथ उनकी एक और कविता है रोटी और स्वाधीनता, जो कि आज़ादी के ऊपर लिखी गई है, यानी आज़ादी के चंद साल बाद लिखी गई है। क्योंकि हम आज़ाद तो हो चुके थे लेकिन अभी भी हम आज़ाद नहीं थे। अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं और अभी भी हैं जो हमें आज़ाद नहीं होने देती हैं। तो चलिए इस रचना को सुनते हैं। आज़ादी तो मिल गई मगर ये गौरव कहाँ चुकाएगा, मर भुके इस घबराहट में तू बेचना तो खाएगा। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वैर नहीं, आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आज़ादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले। इनके जादू का जोर बला कब तक वो बख्शू सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा ये बलिदान भूख की घनी चोट सह पाएगा, आ पड़ी विपत्त तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा। है बड़ी बात आज़ादी का पाना ही नहीं जुगाना भी, बल्कि एक बार ही नहीं उसे पड़ता फिर दोहराना भी। आज़ादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा, आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रोटी और स्वाधीनता। कुछ ऐसे ही कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। सिर्फ छोटी रचनाओं से ही नहीं, उन्होंने लोगों को अपने महाकाव्यों से भी, अपनी ग्रंथों जो कि मिथोलॉजीज लिखी गई हैं उनसे भी प्रेरित किया। उन्होंने महाभारत का जो सुंदर वर्णन किया है अपनी पुस्तक रश्मि रथी में, उसके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं वो कम पड़ जाएंगे। तो चलिए इस कालजयी कृति को भी पढ़ते हैं। ये सर्ग लिया गया है रश्मि रथी से। ये सर्ग काफ़ी फेमस है। इसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि जब दुर्योधन को बोला जाता है कि पांडव जब दुर्योधन से बोलते हैं कि वो कौरव उनको सिर्फ़ और सिर्फ 5 ग्राम दे दें, उन्हें कोई युद्ध या विध्वंस नहीं चाहिए, लेकिन दुर्योधन कहा जाता, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ, विवेक उसका मार दिया गया था। उसने उस संधि से इनकार किया, तो इनकार करने के बाद फिर श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने आते हैं। नहीं समझता है तो फिर चेतावनी दी जाती है। तो देखते हैं कि ये क्या चेतावनी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, मगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप तिभाल भूमंडल बक्षिस्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचल जीव जग छर अचर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, षटकोटि चंद्र षटकोटि सूर्य षटकोटि सरित सर सिंधु मंद, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रूढ़ षटकोटि काल षटकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ा कर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांधे इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल न पहचाना, तुले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बलसेगी भू पर वहीन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मार बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सबासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कल जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। रामधारी सिंह दिनकर जी की शैली भी वीर रस से ही ओतप्रोत थी। रोमांटिसिज्म में उन्होंने कम लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने वीर रस पर लिखी। चाहे चिन की ही बात की जाए, कलम आज उनकी जय बोल, या फिर सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सारी रचनाएं। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। आशा करती हूँ कि आप सबको ये रचनाएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इस पॉडकास्ट को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगी इस शनिवार को एक कविता के साथ ही। तब तक के लिए खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रे फॉर मी एंड आई विल प्रे फॉर यू, एंड लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अलविदा।